हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही अपने हाथों में कॉफी की ट्रे लिए वार्ड के अंदर आई और फिर काशी और राधेश्याम को देखकर बोली, मम्मी पापा आपने कॉफी नहीं पी, सुबह उठने पर आपको कॉफी पीने की आदत है ना, आप इधर आइए और पहले कॉफी पी लीजिए। अभी तक वीहा को खोज तो आया नहीं है, तो यहाँ रहकर वैसे कोई फायदा नहीं है और इस कमरे में एक बार के लिए सिर्फ एक ही इंसान रह सकता है। काशी और राधेश्याम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर दोनों ही धीमे कदमों से चलकर अनाही के पास आए। काशी ने प्यार से अनाही के सर को सहलाते हुए कहा, मेरी बच्ची तुम कब तक ऐसे मजबूत बनने की कोशिश करोगी? अनाही ने मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरे अंदर मजबूत बनने की ताकत है बस तब तक। अब ज्यादा बातें मत करिए और ये कॉफी ले लीजिए। काशी ने दो कप कॉफी उठा ली और उसके बाद वो दोनों फिर से कमरे से बाहर चले गए। अनाही ने गहरी सांस ली और फिर वेदांत के पास आकर उसकी तरफ भी कॉफी बढ़ाते हुए बोली, वेदांत जी गुड मॉर्निंग। वेदांत ने भरी नजरों से वीहा के बेड की तरफ देखते हुए कहा, अनाही मेरी मॉर्निंग अब कभी अच्छी नहीं होने वाली है और प्लीज तुम ऐसे मत बिहेव करो जैसे तुम्हें मैं अभी उतना ही अच्छा लगता हो जितना पहले लगता था, क्योंकि मैं सिर्फ नफरत के लायक हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी बहन की कितनी बुरी हालत हो गई है और तुम हो कि मेरा ख्याल रखना चाहती हो, ऐसा मत करो। अनाही गहरी सांस लेकर वेदांत के पास बैठी और फिर कॉफी का घूंट भरते हुए बोली, अच्छा आप मुझे बताइए कि आप सच में चाहते थे कि ये हो जाए? वेदांत ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरी टोमेटो बीमार हो जाए और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले खत्म हो जाए। इस बार अनाही ने भी ठीक उसी तरह गुस्से में कहा, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि सब लोग आपसे नफरत करें जबकि आपकी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं थी? अब चुपचाप ये कॉफी पी लीजिए, थोड़ी देर बाद मम्मी जी भी आने वाली हैं, वो अपने बेटे को इस हालत में नहीं देखना चाहती हैं। इतना बोलकर अनाही ने वो कॉफी कप टेबल पर रख दिया। वेदांत ने रोते हुए अनाही के गले लगने की कोशिश करके कहा, मुझे नहीं हो पा रहा है अनाही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे तुम बार बार ये बोलना बंद करो कि मैं खुद को मजबूत दिखाऊं, रोना बंद कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। अनाही को तुरंत ही रूहान की बात याद आई और उसने वेदांत के हाथों को रोकते हुए कहा, ठीक है मैं बाहर जाती हूँ, रूहान जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी मैंने कॉफी नहीं दी थी, आपकी कॉफी पीजिए और खुद को शांत कर लीजिए, ठीक है? इतना बोलकर अनाही ने उठाई और वो वार्ड से बाहर चली गई। अब तो वेदांत को यकीन होने लगा था कि सच में अनाही उससे नफरत करती है और वो बहुत बुरा इंसान है, वरना आज से पहले कभी भी अनाही ने उसे खुद के गले लगने से नहीं रोका है और ना ही कभी उसके चेहरे पर अनकंफर्टेबल लुक आया है जो कुछ देर पहले आया था। वेदांत ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया और फिर से रोने लगा। तो वही अनाही अब बाहर रूहान के पास जाकर बेंच पर बैठ गई थी। रूहान ने जब देखा कि अनाही परेशान नजर आ रही है तो उसने अपना कॉफी कप नीचे रखते हुए कहा, क्या हुआ मैडम जी, सब कुछ तो ठीक है, अब तो आपके मम्मी पापा भी नहीं रो रहे हैं, देखो वो कितने आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और डॉक्टर भी बोल रही हैं कि वीहा आउट ऑफ डेंजर है, अब बस वो गोलियों के नशे में सो रही है, बाकी उसे कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर भी आप उतनी परेशान हैं। अनाही उसे कैसे बताई कि वेदांत को ऐसे अकेला छोड़कर उसे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर पहले उसने जो हरकत की थी उसे उस बात पर ही खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र रूहान को देखकर कहा, अच्छा आपकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है जो आपको हक करती हो? रूहान के दिमाग में तुरंत ही मोहिनी का चेहरा घूम गया। उसने जल्दी से कहा, है ना, मैंने मिलवाया तो था आपको जंगल में उससे, सही है मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कई बार जब मैं परेशान होता हूँ तो वो मुझे अपने गले लगा लेती है। अनाही ने गहरी सांस छोड़कर कहा, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं वेदांत जी के पास ना जाऊं? आपको पता है थोड़ी देर पहले उन्होंने रोते हुए मुझे गले लगाने की कोशिश की पर मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि आपने मुझे मना किया था, मुझे बुरा लग रहा है। रूहान की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं और उसने हल्के गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो आज के बाद से कभी ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। अनाही की आंखों में हैरानी आ गई, उसने कन्फ्यूज होते हुए कहा, क्या दोबारा नहीं होगी, क्या मैं अपने पिताजी को गले लगा सकती हूँ? रूहान ने बार बार नामे गर्दन हिलाकर कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कभी मोहिनी को हग नहीं करूंगा। रूहान की बात सुनकर अनाही ने अपना माथा पीट लिया, उसका पति कितना ज्यादा जिद्दी था और अनाही को पता था अब रूहान से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने अपना सर बेंच के एड्रेस से टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर रूहान ने अपने मन ही मन कहा, सबको मेरी ही चीजें क्यों चाहिए होती हैं, जो मुझे पसंद हो वो सिर्फ मेरे पास रहेगी, मुझे भी पता है मैडम जी के गले लगाकर कितना सुकून मिलता है, पर वो सिर्फ मेरे लिए है किसी और के लिए नहीं। इतना बोलकर रूहान ने एक बार अनाही की तरफ देखा जो अब गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर रही थी। सुबह के करीब 11 बजे वीहा की पलकें हल्की फड़फड़ाने लगी थी। वेदांत जिसकी नजरें उस पर टिकी हुई थी उसने जैसे ही वीहा की पलकों में हरकत महसूस की वो लगभग दौड़ते हुए उसके पास आ गया और फिर वही बेड पर बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, टोमेटो।
जिसके साथ ही विहा ने आंखें खोलकर वेदांत के चेहरे को देखा। उसे फिलहाल वेदांत साफ नहीं नजर आ रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद फिर से आंखें खोलकर वेदांत को देखा। इस बार उसे वेदांत काफी हद तक साफ नजर आने लगा था। विहा ने कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। उसके होंठ और गला सूखा हुआ था। वेदांत ने जैसे ये देखा, उसने जल्दी से साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर विहा के होंठों की तरफ बढ़ाया। विहा ने दो घूंट पानी पिए, जिसके बाद वेदांत ने संभालते हुए उसे बेड पर बैठा दिया और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब कैसा महसूस कर रही हो टोमैटो? विहा ने कसमसाते हुए दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना था। वेदांत ने आहिस्ता से उसे बेड से उठाते हुए कहा, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। विहा थोड़ी देर पहले की बातें भूल चुकी थी। फिलहाल उस पर दवाइयों का नशा था, उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वेदांत उसे वॉशरूम से बाहर लाते हुए बोला, कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? विहा ने कुछ नहीं कहा। वेदांत ने उसे वापस बेड पर बैठाकर उम्मीद से उसके चेहरे को देखा। इस बार विहा काफी हद तक संभल चुकी थी। उसने आंखें खोलकर वेदांत के चेहरे को देखा। अब वो उसे बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसकी लाल आंखें, सूखे हुए होंठ और गले से निकलती भरी आवाज, जिससे उसकी तबीयत का अंदाजा लग रहा था। विहा ने अचानक ही आंखें बड़ी करते हुए कहा, मेरा बच्चा वेदांत। इतना बोलकर उसने अपने पेट को हाथ लगाया और अचानक ही उसे वो सारी बातें हिट करने लगी जो कल होश में आने पर वेदांत ने उससे कही थी। और विहा फिर से वेदांत के चेहरे को देखने लगी, जिसकी आंखें फिर से भर गई थी। वेदांत ने उसके करीब बैठते हुए कहा, टोमैटो प्लीज संभालो खुद को, मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। अगले ही पल विहा ने गुस्से में वेदांत को धक्का देते हुए कहा, अब आपका काम नहीं है क्या? मेरे पास क्यों आए हो आप? अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब किसी को आपकी जरूरत नहीं है। विहा के ऐसे धक्का देने से वेदांत फर्श पर गिर गया था
और अब हैरानी से विहा की तरफ देख रहा था। उसे विहा से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अनाही और रुहान दोनों एक साथ वार्ड के अंदर आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि वेदांत फर्श पर गिरा है, उन दोनों की आंखों में एक साथ हैरानी आ गई। अनाही लगभग दौड़ते हुए वेदांत के पास आई और फिर उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोली, आप कैसे गिर गए वेदांत जी?